जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य चरितामृत की मैं कल कितना तक किया था 47 ना हाँ 56 तक हाँ 56 कल मैं 56 श्लोक तक 56 श्लोक तक पाठ किया था मध्यलीला 16 अध्याय मैं 54 से शुरू करता हूँ। पूर्ववत रथ यात्रा कईल दर्शन हेरा पंचमी यात्रा देखे लइया भक्तगण। पिछले वर्ष की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों सहित रथ यात्रा उत्सव तथा हेरा पंचमी उत्सव भी देखा। आचार्य गोसाई प्रभुर कईल निमंत्रण तार मध्ये कईल जयछे झड़ बरिशन। तब अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया, किंतु तभी तेज वर्षा के साथ भीषण तूफान आ गया। विस्तारी वर्णिया छेन दास वृंदावन श्रीवास प्रभुरे तबे कोइलो निमंत्रण। इन सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। तब एक दिन श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया। प्रभुर प्रिय व्यंजन सब रांधेन मालिनी भक्ते दासी अभिमान स्नेहेते जननी। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी ने महाप्रभु की प्रिय तरकारियां पकाई। वे भक्ति वश अपने को महाप्रभु की दासी मानती थी, किंतु स्नेह में वे माता तुल्य थी। श्रीवास ठाकुर का पत्नी थी मालिनी देवी। तो श्रीवास ठाकुर ने उनको चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किया घर में प्रसाद लेने के लिए। और तो यहाँ मालिनी देवी का वर्णन हो रहा है, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने प्रिय व्यंजन थे तरकारियाँ जो महाप्रभु का प्रिय था वो सब तरकारियाँ पकाई। और उनकी वर्णन करते हुए बोला कि भक्ति में उनका मन में भगवान की दासी महाप्रभु की दासी की भावना थी, दासी जैसी मानती थी अपने आप को, बल्कि स्नेह में वो माता तुल्य थी। महाप्रभु का अपने पुत्र की तरह उन्होंने देखती थी। आचार्य रत्न आदि जत मुख्य भक्तगण मध्य मध्य प्रभुरे करें निमंत्रण। चंद्रशेखर आचार्य रत्न आदि प्रमुख भक्त बारी बारी से महाप्रभु को निमंत्रण करती रही। चातुर्मास अंते पुनः नित्यानंद लइया किबा जुक्ति करे नित्य निभृते बसिया। चातुर्मास से बीत जाने पर महाप्रभु नित्य ही एकांत स्थान में नित्यानंद से परामर्श करते थे, किंतु कोई ये नहीं जान सका कि वे क्या बातें करते थे। आचार्य गोसाई प्रभु के कड़े ठाड़े ठाड़े आचार्य तर्चा पड़े के हो बुझीते ना पारे। तब शिला अद्वैत आचार्य ने इशारों में महाप्रभु से कुछ कहा और कुछ पद पड़े जिन्हें कोई नहीं जान सकता था। तार मुख देखी हासे सचिर नंदन अंगीकार जानी आचार्य करे नर्तन। अद्वैत आचार्य का मुंह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। ये जानकर कि महाप्रभु ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, अद्वैत आचार्य नाचने लगे। किबा प्रार्थना किबा आज्ञा केहो ना बुझिल आलिंगन करी प्रभु तारे विदाय दिल। ये कोई नहीं जान सका कि अद्वैत आचार्य ने किस चीज के लिए प्रार्थना की अथवा महाप्रभु ने क्या आदेश दिया। आचार्यों का आलिंगन करने के बाद महाप्रभु ने उन्हें विदा किया। नित्यानंद कहे प्रभु सुनहो श्रीपाद एई आमी मागी तुमी करहो प्रसाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे श्रीपाद मेरी सुनो, मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ, उसे स्वीकार करो। प्रतिवर्षे नीलाचले तुमि ना आसिबा गौरे रही मोर इच्छा सफल करिबा। प्रतिवर्ष जगन्नाथ पुरी ना आकर अपितु बंगाल में ही रहकर मेरी इच्छा पूरी करो। ताहा सिद्धि करे कहन अन्य ना देखिए आमार दुष्कर कर्म तोमा हईते हए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम ये कार्य कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौड़ देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता जो मेरे मिशन को पूरा कर सके। अचिंत शक्ति करो तुमी ताहार घटन जे करा हो सेई करी न्याही को नियम। आप अपने अचिंत शक्ति से जो चाहे सो कर सकते हैं और आप मुझसे जो भी कराते हैं उसे मैं बिना किसी प्रतिबंध के करता हूँ। तारे विदाय दिलो प्रभु कोरी आलिंगन एई मत विदाय दिलो सब भक्तगण। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। तब उन्होंने अन्य सारे भक्तों को विदा किया। कुलीन ग्रामी पूर्ववत कईल निवेदन प्रभु आज्ञा करो आमार कर्तव्य साधन। पिछले वर्ष की भांति कुलीन ग्राम के एक निवासी ने महाप्रभु से विनती की, हे प्रभु कृपा करके बताए कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं इसे कैसे पूरा करूं। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ अद्वैत आचार्य का कुछ इशारा में और कुछ ऐसे ऐसे कुछ गुप्त भाव में कुछ बातचीत हुआ था। ऐसे हम जब बातें करते हैं तो सीधे बोलते हैं, बल्कि कभी कभी ऐसे भी बातें किया जाता है ताकि दूसरे ना समझ सके। तो अद्वैताचार्य ने महाप्रभु के साथ ऐसे कुछ बात किया था। और वो ये बात सुनकर कोई समझ नहीं पाया कि अद्वैत आचार्य ने क्या बोला और महाप्रभु ने उनको क्या स्वीकार किया। ये अद्वैत आचार्य की बातें सुनकर महाप्रभु मुस्काए, महाप्रभु हंसने लगे। तो अद्वैत आचार्य को पता चला कि महाप्रभु उनका जो कहना था उसको स्वीकार कर लिया, तो बहुत खुशी होकर उन्होंने नाचने लगे। और इसके पश्चात महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि तो हमेशा हर साल तुम जगन्नाथपुरी में मत आया करो। क्यों? उन्होंने बताया कि ये बंगाल में प्रचार करने का जो कार्य है वो तो हमको करने को था, बल्कि मैं तो निकल गया हूँ, मैं संन्यास ले लिया, तो ये कार्य तुमको करना, प्रचार करना। तो प्रचार अगर करोगे और हर साल अगर यहाँ आओगे तो 3-4 महीना हर साल ऐसे ही चला जाएगा। तुम यहाँ ठहरोगे 3 महीना और आने जाने में भी शायद 1 महीना लग जाएगा, तो महीना 12 महीना में अगर 4 महीना तुम यहाँ रहोगे तो प्रचार कैसे होगा, तो इसलिए तुमको यहाँ मत आना, तुम बंगाल में ही रहकर प्रचार करो। और उनके ये कहने के, ये निर्देश देने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आलिंगन किया और इसके बाद उन्होंने और सारे भक्तों को विदा किया। सब लोग जगन्नाथपुरी आए थे, क्यों आए थे? रथ यात्रा के लिए। तो रथ यात्रा के पश्चात उन्होंने वहाँ ठहर गए थे। बारिश के समय तो सफ़र करना उस समय मुश्किल होता, क्योंकि इतना पानी होता और कीचड़ होता बारिश के समय। इस समय सफ़र करना, भ्रमण करना मुश्किल होता, इसलिए उन्होंने साधु लोग उस समय भ्रमण नहीं करते थे। एक ही जगह रहकर भगवान के चिंतन में, भगवान के महिमा कीर्तन में उन्होंने बिताते थे, जिसे चातुर्मास्य कहा जाता है। तो चातुर्मास्य का समाप्ति के बाद जब सब लौटने थे, लौटने के लिए तैयार हो रहे थे, तब महाप्रभु ने उन सबको मिला था। अद्वैत आचार्य को मिला था, नित्यानंद प्रभु को मिला, और उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु कुलीन ग्राम के जो आदमी थे, भक्त लोग थे, उनके साथ मिले। तब एक कुलीन ग्राम के एक निवासी ने महाप्रभु से विनती की, हे प्रभु, कृपा कृपा करके बताए कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं इसे कैसे पूरा करूं। भक्त लोग के मन में ये प्रश्न आता है बहुत बार, मैं क्या करूं, कैसे मैं भक्ति करूं, जो मैं कर रहा हूं ये क्या सही हो रहा है। तो तब चैतन्य महा ये प्रश्न होता ना, सब लोग भक्त कर रहे हो, सब एकदम परफेक्ट बन गए हो या बनने का कोशिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। जब कोशिश कर रहे हो तब ऐसा लगता है कभी कभी कि कैसे मैं और भी अच्छा तरह सेवा कर सकूं, जो मैं कर रहा हूं ये क्या सही हो रहा है। लगता तो है नहीं हो रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि बल्कि लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं पीछे चल रहा हूं। तो ऐसी मनोभाव होता है, ऐसी सवाल मन में आता है। तो ये भक्त तो पूछा महाप्रभु को, क्या मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा क्या करना चाहिए, भक्ति मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए। ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है, तो इसका जवाब भी ध्यान से सुनना, ठीक है? सब ध्यान से सुन रहे हो? ये सुनने के लिए तैयार हो? ओके, तो सुनो। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावे श्रीकृष्ण चरण। अर्थात महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रश्न क्या था? मेरा कर्तव्य क्या है, कैसे मैं भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ूंगा? तो आपका मन में भी ये प्रश्न है? जिसका मन में प्रश्न नहीं है हाथ उठाइए। अच्छा, मतलब सबको मन में ही ये प्रश्न है, कैसे मैं भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ सकता हूँ, क्या कर्तव्य है मेरा, क्या करना चाहिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? तुम्हें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के दासों की सेवा में अपने को लगाओ और सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन किया करो। यदि तुम ये दोनों काम करोगे तो तुम्हें शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सकोगी। क्या करना चाहिए? वैष्णव का सेवा। वैष्णव कौन है? वैष्णव कौन है? वैष्णव का मतलब है जो भगवान का सेवक है, भगवान का भक्त है, भगवान का दास है। विष्णु का भक्त को विष्णु कौन है? विष्णु है भगवान। भगवान के जो दास हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। विष्णु से ये शब्द आया है। विष्णु स्वयं भगवान, भगवान का दास है, भगवान का सेवक, भगवान का भक्त है वैष्णव। तो वैष्णवों को सेवा करना, भगवान के भक्तों को सेवा करना, उनको सहयोग देना, उनका कार्य में मदद देना, तो ये है वैष्णव सेवा। केवल दो कार्य है, बहुत सिंपल प्रोसेस है ना। पूछा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, महाप्रभु सिर्फ दो काम दिया, वैष्णवों को सेवा करो और नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन का मतलब भगवान का नाम का कीर्तन करते रहो, भगवान के नाम का कीर्तन करो और दूसरे को भी भगवान के नाम कीर्तन करने में प्रेरणा देते रहो। यह इसी का मतलब है भक्ति। नाम संकीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन। अगर तुम ये दो काम करोगे, यदि तुम ये दोनों काम करोगे तो तुम्हें शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सकोगी। भगवान के चरण कमलों में शरण लेना जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तो ये काम क्या कठिन है? भगवान के चरण कमलों का शरण लेना कठिन है? किसी को शरण लेना कठिन है? नहीं, उनके समान बनना या उनसे बड़ा होना कठिन होता है। हम अगर आपके पास आकर बोला कि मैं क्या कर सकता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आपका मन में तब क्या ऐसा भावना आएगा? कैसा भावना आएगा? ऐसा भावना आएगा कि ओ अच्छा, आप इतना चलिए, हम मेरे लिए आपको कुछ करना नहीं, आप बताइए आपको लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और तो ये बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वो बोलेंगे नहीं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये भाव, ये भाव ही होना चाहिए। तो ये भाव का प्रकाश कैसे होता है, ऐसे संपर्क कैसे बनता है? जब हम विनम्र भाव से उनके शरण लेते हैं, मतलब उनसे छोटा बन जाते हैं। बल्कि जब हम उनसे बड़ा बनना चाहते हैं तब क्या होता है, तब कठिन है। वो हम जाके बोलेंगे मैं आपसे बड़ा बनना चाहता हूं, तो क्या बोलेंगे, क्या आप हमसे बड़ा बनेंगे? मैं आपसे कितना बड़ा हूं? तो बाद में हम बोलेंगे ठीक है चलो देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब वापस में हाँ लड़ाई होगा। तो लड़ाई में अंत, लड़ाई लड़ाई के समय बहुत चोट लगता है, कठिनाई होता है, हाँ, और उसके पश्चात एक बड़ा बनता है और दूसरा खत्म हो जाता है। तो ये जो है इसमें तकलीफ काफी काफी होता है ना, बड़ा बनने में काफी कठिनाई है, बल्कि छोटा बनने में कोई कठिनाई या असुविधा होता है नहीं। तो हमें क्या बनना चाहिए, बल्कि आप सवाल है छोटा बनना चाहिए, बल्कि किसके पास छोटा बनना चाहिए, जो सही रूप से जो असल से ही बड़ा है उनके पास जाके छोटा बनना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है भगवान। सो भगवान से छोटा बनने में कोई हर्जा है? भगवान से छोटा बनने में कोई असुविधा या मुश्किल हो सकता है? नहीं। तो पहले हम वहां से ही शुरू करते हैं, है ना, भगवान से छोटा बनना। तो छोटा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उनके छोटा का मतलब छोटा बड़े के अधीन रहता है, उनके शरण में रहते हैं, अर्थात उनका मनोभाव ये होता है कि मैं आपका शरण ले लिया, आप मेरा देखभाल कीजिए, आप मुझे बताइए हमें क्या करना चाहिए, और मैं भी आपको पूछता रहूंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तब ये प्रश्न कौन किया था? कुलीन ग्राम के निवासी, कुलीन ग्राम के निवासी ने प्रश्न किया। तब महाप्रभु का उत्तर क्या था? श्री चैतन्य महाप्रभु का उत्तर क्या था? वैष्णवों को सेवा करो और नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम का कीर्तन करो। तो ये काम तो मैं जैसे पूछा था, ये क्या कोई कठिन काम है? तो ये काम करने से क्या होगा? तुरंत ही श्री कृष्ण का चरण कमलों का सहारा मिल जाएगा। दुई करो शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। ये दो काम अगर तुम करोगे तो जल्दी से जल्दी ही तुम्हें कृष्ण का चरण कमलों का सहारा मिल जाएगा। तब कुलीन ग्राम वासी ने, कुलीन ग्राम के निवासी और एक प्रश्न किया चैतन्य महाप्रभु का। तो उन्होंने क्या बोला? तेहो कहे के वैष्णव कीतार लक्षण, तबे हासि को कहे प्रभु जानी तार मौन। उस कुलीन ग्राम वासी ने कहा कृष्ण कृपा करके बतलाए कि वास्तव में वैष्णव कौन है? आप तो बोला वैष्णव को सेवा करना, बल्कि वैष्णव कौन है? मैं कैसे पहचानूं वैष्णव को? उनका उसके लक्षण क्या है? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो व्यक्ति सदैव भगवान का नाम कीर्तन करता रहता है उसे उत्तम श्रेणी का वैष्णव मानना चाहिए। और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसके चरण कमलों की सेवा करो। मतलब जो व्यक्ति सदा हर समय भगवान का नाम कीर्तन करता रहता है उसे उत्तम श्रेणी का वैष्णव मानना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? उत्तम वैष्णव कौन है? जो निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करता है। जो नहीं करता है वो मध्यम, जो नहीं कभी कभी करता है वो है मध्यम। बल्कि उत्तम जो हर समय भगवान का नाम कीर्तन करते हैं उनका ही सेवा करना चाहिए, उत्तम वैष्णव का सेवा करना चाहिए। বর্ণান্তরে পুনতারা ঐছে প্রশ্ন কইল, বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল। আগলে বর্ষ ভি কুলিন গ্রামবাসিও নে মহাপ্রভু সে ফির ওই প্রশ্ন পুছা। মহাপ্রভু নে পুনঃ বিভিন্ন প্রকার কে বৈষ্ণব কো বিভিন্ন প্রকার কে বৈষ্ণব কে বিষয় মে শিক্ষা দি। যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম, তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে কহা, উত্তম কোটি কা বৈষ্ণব ও হ্যায় জিসকি উপস্থিতি মাত্র সে অন্য লোক কৃষ্ণ নাম কা কীর্তন করনে লাগতে হ্যায়। উসসে ভি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কোন হ্যায় জো হর সময় ভগবান কা নাম লেতে হ্যায় ও উত্তম বৈষ্ণব হ্যায়। উনসে ভি বড়কর কোন হ্যায়, উনসে ভি বড়কর কোন হ্যায়, जिनको देखने से ही कृष्ण नाम मुंह में आ जाता है। अच्छा, तो पहली बार पहले साल प्रश्न किया था, कौन क्या प्रश्न था, यही प्रश्न था वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु दिए उत्तर दिया था, गंगा नारायण शुरू शुरू में बताया था। बताओ गंगा नारायण। जिसका मुंह में एक बार कृष्ण नाम होता है उनको भी वैष्णव मानना चाहिए और उनके उनको श्रद्धा करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद इस साल उन्होंने क्या पूछा, जब पूछा वैष्णव कौन है तो तब महाप्रभु ने बताया जो कृष्ण नाम करते हैं वो हैं वैष्णव, जो निरंतर, निरंतर का मतलब हमेशा सदैव, जो सदा सर्वदा भगवान का नाम कीर्तन करते हैं वो है वैष्णव, मतलब वो है उनसे बढ़कर, जो एक दो बार की भगवान का नाम लेते हैं उनसे बढ़कर है जो हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। और उसके पश्चात अगले साल उन्होंने जब आया तो भी, तब भी उन्होंने ये प्रश्न किए थे और तब महाप्रभु ने उत्तर क्या दिया, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है, वैष्णव प्रधान, श्रेष्ठ वैष्णव है वो जिनको देखने से ही मुंह में कृष्ण नाम आ जाता है। ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ, বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম। ইস তরহ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে বিভিন্ন প্রকারকে বৈষ্ণব, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর তথা বৈষ্ণবতম কি শিক্ষা দি। উনহোনে কুলিন গ্রাম কি নিবাসীয় কো এক কে বাদ এক करके वैष्णव के सारे लक्षण समझा दिया। एई मतो सब वैष्णव गौड़े चलिला, विद्यानिधि शेष बत्सर नीलाज रहिला। अंततो गत्या सारे वैष्णव जन बंगाल लौट गए, किंतु उस वर्ष पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथपुरी में ही रहे। स्वरूप सहित तार हय सत्य प्रीति, दुई जनाय कृष्ण कथाय एक एई स्थिति। स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा पुंडरीक विद्यानिधि में घनिष्ठ मित्रता थी और जहाँ तक कृष्ण विषय कथाओं पर बात वाद विवाद करने की बात थी, वे दोनों ही समान स्तर के थे। गदाधर पंडित तेहो पुनमंत्र दिलो, ওরণ ষষ্ঠীর দিন যাত্রা যে দেখিল। পুণ্ডরীক বিদ্যাধিধি নে গদাধর পণ্ডিত কো দুবারা দীক্ষিত কিয়া ওর ওরণ ষষ্ঠী কে দিন উসনে উৎসব দেখা। গদাধর পণ্ডিত এক সময় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কে চরণ মে কুছ অপরাধ কর চুকে থে। উস সময় মহাপ্রভু নে কুছ নেহি বোলা, বল্কি বাদ মে উনহোনে বতায়া কি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কে পাস কুছ অপরাধ হো গয়ে। তো ইয়ে অপরাধ খণ্ডন কে লিয়ে ক্যা নির্দেশ চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়া, বোলা কি তুম উনকে পাস জাকে দীক্ষা লে। তো বেসে গদাধর পণ্ডিত যদ্যপি উনকা দীক্ষা পূর্বে পহলেই হো চুকা থা, ফির সে উনহোনে গদাধর পণ্ডিত সে মন্ত্র লেকর উনকা শিষ্য বন গয়ে। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কা শিষ্য বন, গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কা শিষ্য বন। আর বেসে ভি হাম দেখেঙ্গে জব হাম আগে অর বড়েঙ্গে তব দেখেঙ্গে কি ইয়ে সারে বিচার জো হ্যাঁ ইসকা পিছে এক, আর ইয়ে জো লীলা হ্যাঁ এ লীলা কা পিছে অর কোই বাত ভি থা। জেসে গদাধর পণ্ডিত কোন হ্যাঁ কৃষ্ণ লীলা মে, গদাধর পণ্ডিত হ্যাঁ রাধা রানী, আর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কোন হ্যাঁ মহারাজ বিশ্বভান কিং বিশ্বভানু রাজ। তো রাধা রানী কা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কেয়া কোন হতে থে, রাধা রানী কা পিতা। তো গদাধর পণ্ডিত হ্যাঁ রাধা রানী আর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হ্যাঁ উনকা পিতা। তো উনকে পাস কেসে রহনা চাইয়ে থা উনকো, বিনম্র ভাব সে বেটি জেসে পুত্রী জেসে আপনি পিতাকে পাস রহতে হ্যাঁ, বেসে রাধা রানীকে ভাব লেকর গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কো শরণ লিয়া থা। জগন্নাথ পড়েন তথা, আচ্ছা আব বর্ণন হো রাহা হ্যাঁ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কাজ মহান স্থিতি থা উসকা। জগন্নাথ পড়েন তথা মাড়ুয়া বসন দেখিয়া সঘৃণ হইল বিদ্যানিধির মন। যা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নে দেখা কি জগন্নাথজি কো মারযুক্ত বস্ত্র ওড়ায়া জানা যাতা হ্যাঁ, তো ও কুছ কুছ ঘৃণা সে ভর গয়া, ইস তরহ উসকা মন দূষিত হো গয়া। গদাধর পণ্ডিত জগন্নাথ মন্দির মে গয়ে থে, গদাধর পণ্ডিত রহতে থে বঙ্গাল মে, জো আজ পূর্ব বঙ্গাল হ্যাঁ, উস সমুদ্র কে কিনারে এক শহর হ্যাঁ জিসকা নাম হ্যাঁ চট্টগ্রাম। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কা স্থিতি উহাঁ পর থা চট্টগ্রাম শহর মে। উনকা জো মকান থা ও আব ভি হ্যাঁ, মকান তো গির গয়া বল্কি ও জমিন জো হ্যাঁ ও আব ইসকন কো জিম্মেদারি মে, কাফি বড়া ও জমিনদার থে বহুত মশহুর ব্যক্তি থে। তো উনহোনে জব জগন্নাথপুরী আয়া আর দেখা কি জগন্নাথ কো মার যুক্ত বস্ত্র দিয়া গয়া। মার কা মতলব ক্যা হতা হ্যাঁ, মার অ্যারোরুট কো কপড়া সখ্ত করনে কে লিয়ে কেসে মারি বলতা হ্যাঁ না মার, ওকে ধন্যবাদ। মাড় মাড় যুক্ত বস্ত্র, তো ইয়ে মাড় জো হ্যাঁ ইয়ে শুদ্ধ নেহি হ্যাঁ মানা যাতা হ্যাঁ, কপড়া মে এসে লাগায়া যাতা হ্যাঁ নয়া কপড়া মে, বল্কি উসকো ধোকর পহনতে হ্যাঁ। তো ইয়ে মাড় মাড় যুক্ত বস্ত্র উনকো পহনায়া গয়া থা জগন্নাথ কো। তো পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নে ইসকা কুছ আলোচনা কিয়া কি ইয়ে কেসে পূজারী লোক কেসে হ্যাঁ, ये जो कपड़ा, ये जो शुद्ध नहीं है, ये जगन्नाथ को पहनाया है। সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসি, জগন্নাথ বলাই আসিয়া দুই ভাই চড়ান তারে হাসিয়া। উস রাত কো জগন্নাথ তথা বলরাম দো ভাই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কে ঘর আয়ে আর হাস হাস কর উসে চপট লাগানে লাগে। কিউ গাল ফুলিল আচার্য অন্তরে উল্লাস, বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। যদ্যপি চপট লাগানে সে গাল সুজ উঠে থে, কিন্তু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভিতর সে পরম প্রসন্ন থে। ইস ঘটনা কা বিস্তৃত বর্ণন ঠাকুর বৃন্দাবন দাস নে কিয়া হে। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবত মে ইসকা বিস্তৃত বর্ণন কিয়ে। এই মত প্রত্যুব্ধ আয়ুষ, আচ্ছা কেউ চপট লাগায়া জগন্নাথ আর বলদেব নে? হ্যাঁ, জগন্নাথ কা চুঁকি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কে নে জগন্নাথ কে আর বলরাম কে পূজারিও কো নিন্দন কিয়া, উনকি বারে মে কুছ উল্টা সিধা বোলা, তো ইসলিয়ে জগন্নাথ কো উনকো সজা দেনে আয়া, গুসা হুয়া। ও তুম মেরা ভক্ত কো, মেরে সেবক কো আলোচনা কর রহে হো, ঠিক হ্যায়। আর যদ্যপি এসা লগা কি ও সপনা দেখ রহা থা, নীদ মে সপনা দেখ রহে থে, বল্কি ইয়ে সপনা নহি থা, কিউকি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নে জব জাগ উঠা ও চপট খাকর তব দেখা কি উনকা গাল মে সুজ হো গয়ে হ্যায়। সহি চপট লগানে সে জ্যাসা গাল মে সুজ হো জাতা হ্যায়, তো জগন্নাথ আর বলরাম কা চপট খাকর তব বল্কি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কা মন মে বহুত আনন্দ হুয়া, ও বহুত প্রসন্ন হো গয়া। কিউকি ভগবান কা, ভগবান সে সজা মিলনে সে ভি ভক্ত কা মন মে আনন্দ হুয়া। এই মত প্রত্যুব্ধ আয় সে গৌড়ের ভক্তগণ, প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দর্শন। প্রতিবর্ষ বঙ্গাল কে ভক্তগণ আতে আর রথযাত্রা কা দর্শন করনে কে লিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে সাথ ঠহরতে থে। তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ, বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব নিঃশেষ। উন বর্ষো মে জো কুছ উল্লেখনীয় ঘটনায় ঘটি, উনকা বর্ণন বাদ মে কিয়া যায়গা। এই মতো মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল, দক্ষিণ যাত্রা আসিতে দুই বৎসর লাগিল। ইস্তরহ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে চার বর্ষ বিতায়ে, প্রথম দো বর্ষ উনহোনে দক্ষিণ ভারত কে ভ্রমণ মে লগা দিয়া। আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে, রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে। অন্য দো বর্ষ তক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন জানা চাহতে রহে, কিন্তু ওয়ে রামানন্দ রায় কি চালকে কারণ জগন্নাথপুরী ছোড় নহি পায়া। যদ্যপি চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরী ছোড়কর বৃন্দাবন জানে কা জানা চাহতে থে, বল্কি রামানন্দ রায় কে রামানন্দ রায় কে চালো সে, মতলব রামানন্দ রায় কুছ এসা চাল চালা কি মহাপ্রভু জা নহি সকা। জেসে মে বতায়া থা, বোলা ও রথযাত্রা আনে বালা হ্যায়, আপ রথযাত্রা তক ঠহরিয়ে। তো রথযাত্রা কে বাদ জব মহাপ্রভু জানে কে লিয়ে সোচা, ও আপ তো বারিশ হো রহা হ্যায়, আপ জানা মুশকিল হোগা, তো এসে বাহানা দেতে রহে তাকি মহাপ্রভু নহি যা সকা। পঞ্চম বৎসরে গৌরের ভক্তগণ আইল, রথ দেখি না রহিলে গৌরের চলিলা। পাঁচবে বর্ষ বঙ্গালকে ভক্তগণ রথযাত্রা দেখনে আয়ে, কিন্তু দেখনে কে বাদ ওয়ে রুকে নহি, অপিতু বঙ্গাল উঠ গে। তবে প্রভু সার্বভৌম রামানন্দ স্থানে আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে। তব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তথা রামানন্দ রায়কে সমক্ষ এক প্রস্তাব রক্ষা। উনহোনে উন দোনো কো আলিঙ্গন করকে দোনো কা আলিঙ্গন করতে হুয়ে কহা, বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন, তোমার হঠে দুই বৎসর না কইলু গমন। চৈতন্য মহাপ্রভু নে কহা, বৃন্দাবন জানে কি মেরি ইচ্ছা বতলাতি হো উঠি হ্যাঁ, তুমারি চালু সে মেয়ে বিগত দো বর্ষ সে যা নহি পায়া। অবশ্য চলিব দুহে করহ সম্মতি, তোমা দুহা বিনা মোরে নাহি অন্য গতি। আব মেয়ে অবশ্য যাউঙ্গা, আব তো তুম লোক অনুমতি দোগে, তুম দোনো কে অতিরিক্ত মেরে পাশ কই অন্য আশ্রয় নহি হ্যাঁ। গৌর দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়, জগনী জননী জাহ্নবীদে এই দুই দয়াময়। বঙ্গাল মে মেরে দো আশ্রয় হ্যাঁ, মেরি মাতা তথা গঙ্গা নদী, ইয়ে দোনো অত্যন্ত দয়াময় হ্যাঁ। গৌর দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া, তুমি দুহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া। মেয়ে বঙ্গাল হতা হুয়া বৃন্দাবন যাউঙ্গা, ওর আপনি মাতা তথা গঙ্গা নদী দোনো কো দেখুঙ্গা, কে আপ তুম দোনো মুঝে অনুমতি দোগে। কোন পুছ রহে হ্যাঁ? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কিসকো পুছ রহে হ্যাঁ? ওকে, ভেরি গুড। শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচার হয়, প্রভুষণে অতি হট কভু ভালো নয়। জব সার্বভৌম ভট্টাচার্য তথা রামানন্দ রায় নে ইয়ে শব্দ শুনে তো ওয়ে বিচার করনে লগে কি ইয়ে অচ্ছি বাত নহি হ্যাঁ, কি মহাপ্রভু কে সাথ ইতনি চালো চালি যা রহি হ্যাঁ। দুই কহে পূর্বে বর্ষা চলিতে নারিবা, বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য মার চলিবা। উন দোনোনে কহা, বর্ষা ঋতু হোনে সে আপকে লিয়ে যাত্রা করনা কঠিন হো যায়গা। বৃন্দাবন প্রস্তাব করনে কে লিয়ে বিজয়া দশমী তক প্রতীক্ষা করনা ঠিক রহেগা। আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কইল সমাধান, বিজয়া দশমী দিনে করিল প্রয়াণ। ইস্তরহা অনুমতি প্রাপ্ত করকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যধিক প্রসন্ন হুয়ে, উনহোনে বর্ষা ঋতু বীত জানে তক কা প্রতীক্ষা কি, ওর জব বিজয়া দশমী আই তো ওয়ে বৃন্দাবন কে লিয়ে চল পড়ে। ওকে, তো আজ হাম ইহাঁ তক হি পাঠ রাখতে হ্যাঁ। কই প্রশ্ন হ্যাঁ কিসি কো? শ্লোক 85। ইয়েস কৃষ্ণ আচার্য। ভক্ত ভগবান কো ছোড়না নেই চাতে, হর সময় ভগবান কে সাথ রহনা চাতে, ইয়ে হ্যায় প্যার কা লক্ষণ। জব প্যার হতা হ্যায় প্যার কে কারণ হম ক্যা চাতে, প্রেমিক ওর প্রেমিকা কে বীচ জব প্যার হতা হ্যায় তো দোনো এক সাথ রহনা চাতে হ্যায়। বল্কি ये सब हर समय संभव नहीं होता है। तो यद्यपि एक दूसरे से और कहीं जाने का ये होता है, तो स्वत ही प्रेम के कारण उनको रोकने का इच्छा होता है। तो वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु है कौन? कृष्ण, राधा रानी के भाव लेकर कृष्ण। और सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय है उनके भक्त। उनके भक्त होने के नाते उन्होंने भी चाहते थे कि महाप्रभु हमारे साथ ही रहे, जितना तक सके महाप्रभु हमारे साथ रहे। तो इसलिए उन्होंने वैसे बाधा डाल रहे थे, इसमें कोई हर्जा नहीं। भक्त जब भगवान को ये करते हैं, और ये है प्रेम भक्ति का लक्षण, वैधि भक्ति में ये ऐसा नहीं होगा। जहाँ ऐश्वर्य प्रधान है उस भक्ति में ऐसी भावना का प्रकाश नहीं होगा। वहां सब कृष्ण को राजकुमार के रूप में या परमेश्वर भगवान के रूप में सेवा करते हैं द्वारका में। बल्कि वृंदावन में भगवान के भक्त लोग भगवान को छोड़ना नहीं चाहते। यद्यपि भगवान बोलते हमको जाने दो, बोले नहीं जाने दो। ये है प्यार का लक्ष्य। इसका वर्णन तो नहीं हुआ, बल्कि लगता है कि अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को बोला नित्यानंद को बंगाल में रहना चाहिए और प्रचार करना चाहिए, वो बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसको थोड़ा ये करो। तो मेरा बात तो नहीं सुनता है मेरा साथ वो केवल झगड़ा लड़ाई करता है। अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच एक बहुत बहुत सुंदर प्यार के संपर्क था, याद है? प्रेम कुंदल, प्रेम की कुंदल। कुंदल शब्द हिंदी में आता है। अच्छा, तो कुंदल शब्द का अर्थ क्या होगा हिंदी में? झगड़ा, प्यार का झगड़ा। और झगड़ा का और कोई शुद्ध शब्द है क्या? प्यार का कलह, प्यार का संघर्ष। तो याद है जब महाप्रभु सन्यास लेके तीन दिन वैसे वृंदावन की ओर चल रहे थे, दौड़ रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको रास्ता भुला के शांतिपुर ले गया। वृंदावन जाने को सोचा बल्कि, और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में लाया गया। तो अद्वैत आचार्य ने, अद्वैत आचार्य का पत्नी सीता देवी ने करीब 100 से भी अधिक प्रिपरेशन बनाई थी और महाप्रभु को खिलाने लगे। नित्यानंद प्रभु को भी, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों को एक साथ बैठा के खिलाने लगे। महाप्रभु ने क्या बोला कि मेरे लिए तो, मैं सन्यासी हूँ, मेरे लिए इतना खाना ऐसा राजसिक खाना ठीक नहीं है। बल्कि अद्वैत आचार्य ने उनको ये करने लगे, जोर करने लगे कि नहीं, भगवान का प्रसाद है ये, तो आपको देखना चाहिए कि भगवान कैसे इसको आस्वादन किए हैं, ये आप देखना। तो ऐसे जबरदस्त उन्होंने महाप्रभु को खिलाने लगे। बल्कि नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला कि मैं 3 दिन के भूखा हूं और देखो कितना इससे तो मेरा मेरा भूखा भूख मिटेगा नहीं। और अद्वैताचार्य ने क्या बोला, तुमको तुम तो अवधूत हो, इधर उधर घूमते हो, कभी तुमको खाना मिलता है कभी खाना नहीं मिलता है, तो जो कुछ मिला है उसको ही परम प्रसन्न होकर खा लो। तो ऐसे दोनों के बीच में ये होता था। और नित्यानंद प्रभु तब क्या बोला, देखो ये कैसे ब्राह्मण है, हमको घर में बुलाया और घर में बुला के हमको ऐसे हमको डांट रहा है, खिलाया खिला नहीं रहा है परंतु। तो वैसे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु के बीच एक बहुत सुंदर प्यार के संपर्क था। तो इसके नाते चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य ने बोला, नित्यानंद प्रभु साथ था सामने, नित्यानंद प्रभु सामने रहने के कारण उसको बोलना नहीं सका, हाँ तुम उसको बोलो बंगाल में रहने के लिए और वहाँ रहकर प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने बताया, कैसे बताया, सांकेतिक भाषा में बताया। तो महाप्रभु समझ गया। तो उसके पश्चात महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि तुम यह मत आना, हर साल पूरी मत आना रथ यात्रा के अवसर पर, अच्छा रहेगा कि तुम बंगाल में ही रहो और वहां प्रचार करो। और नित्यानंद प्रभु ने बंगाल में बहुत प्रचार किया, उन्हीं के कारण बंगाल में इतना प्रचार उस समय हुआ था। सारा बंगाल उस समय कृष्ण भक्ति का, कितना कृष्ण भक्ति के बाण से सब डूब गया था। अगर हम लोग वृंदावन में होते तो ऐसे लीला कर सकता था। थैंक यू।
इस संदर्भ में नित्यानंद प्रभु और उससे पहले मतलब जैसे से पहले नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद हो रहा था काफी लंबा, कोई समझ नहीं सके उसका भी वर्णन कर सकते हैं। मतलब अद्वैत आचार्य जैसे करने से पहले वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बीच में भी संवाद चल रहा था काफी,
ना वो तो अद्वैताचार्य और महाप्रभु के बीच।
उससे पहले नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बीच में काफी वर्णन है।
अच्छा यहाँ पर है, अच्छा हाँ अच्छा ये श्लोक वो मैं शायद दो तीन ये छोड़ गया था। नहीं ये तो किया था ना हमने। हाँ अच्छा ये दो चार श्लोक मैं, हाँ ठीक है मैं कल इससे पाठ करूंगा। हाँ दो तीन श्लोक मैं बाद छोड़ गया था, पाठ किया था ये मैं जो नित्यानंद कहे आमी देही तुमी प्राण, देहो प्राण भिन्न ना ही यही तो प्रमाण, नहीं ये पाठ नहीं। हाँ अचिंत शक्ति करो तुम्हें ताहार घटन, अच्छा ये मैं काल पाठ करूंगा। ये दो तीन श्लोक मैं ये दो श्लोक दो हाँ ये दो श्लोक बाद हो गए हैं
कल तो नहीं होगा एक तारीख
ओ अच्छा एक तारीख हाँ ठीक है तब हाँ नित्यानंद कहे आमी देही तुमि प्राण देह प्राण भिन्न नहे यही तो प्रमाण नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया हे प्रभु आप प्राण हैं और मैं शरीर हूँ प्राण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं है अपितु प्राण शरीर से बढ़कर हैं अचिंत शक्ति करु तुमि ताहार घटन जे करा हो सेई करी नाही को नियम आप अपनी अचिंत शक्ति से जो चाहे सो कर सकते हैं और आप मुझसे जो भी कराते हैं उसे मैं बिना किसी प्रतिबंध के करता हूँ नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु बंगाल जाके प्रचार करने के लिए बोला पहले बोला हर साल तुम जगन्नाथपुरी न आकर बंगाल में ही रहकर मेरी इच्छा पूरी करो मेरी इच्छा का मतलब भगवत भक्ति का प्रचार करो ताहा सिद्धि करे है नो अन्य ना देखिए अमार दुष्कर कर्म तोमा हुईते हाय श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम ये कार्य करो कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता जो कार्य मैं भी नहीं कर सकता हूँ वो कार्य तुम कर सकते हो इसलिए तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौर देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता है जो मेरे मिशन को पूरा कर सके हाँ तब नित्यानंद प्रभु ने ये बताया कि नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया हे प्रभु आप प्राण हैं और मैं शरीर हूँ प्राण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं है अपितु प्राण शरीर से बढ़कर है आप प्राण हैं मैं शरीर हूँ यद्यपि प्राण और शरीर में अंतर नहीं है परंतु प्राण शरीर से बढ़कर है तो ये सही नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जो काम आप नहीं कर पाते हैं वो मेरे लिए संभव होगा और अचिंत शक्ति कर इसके बाद आप अपने अचिंत शक्ति से जो चाहे सो कर सकते हैं और आप मुझसे जो भी कराते हैं उसे मैं बिना किसी प्रतिबंध के करता है इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया तो मतलब नित्यानंद प्रभु जाना नहीं चाहता था मतलब ये जो निर्देश इसको ग्रहण नहीं करना चाहता था बल्कि महाप्रभु ने उनको फोर्स करके ये कराया और नित्यानंद प्रभु अंत में मान लिया ओके हाँ आज यहाँ तक ही हम रखते हैं अच्छा हाँ कल तो पाठ नहीं होगा कल मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ जयपुर जा रहा हूँ कल तो मैं कल शनिवार रविवार सोमवार तीन दिन मैं नहीं रहूँगा बल्कि मंगलवार को वापस आ जाऊँगा मंगलवार सुबह मैं लौट रहा हूँ तब से फिर क्लास होगा और नहीं तो तुम लोग भी क्लास कर सकते हो ये क्लास अच्छा लगता है हाँ तो क्लास करते रहना तो हिंदी में पाठ हो रहा है राघव पंडित तुम पाठ करोगे राघव पंडित करो पाठ करते रहो ओके एक दिन राघव पंडित देना एक दिन गंगा नारायण देना ठीक है कल गंगा नारायण तो परसों राघव पंडित देगा उसकी बात तुम दो तो ठीक है तुम लोग आना कल आओ देखेंगे कुछ पाठ गंगानंद यू कैन गिव सम हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं नहीं रहता हूँ तो ये बंद हो जाए पाठ होता रहना चाहिए और सबको ओके हाँ वो लीला पाठ करो ठीक है। बीच बीच में जो आया है जिसका वर्णन विस्तृत रूप से नहीं हुआ है उसको पाठ करो। ओके हरे कृष्ण।